पृष्ठ संख्या 25, शीर्षक है धर्म की परिभाषाएं। उपर्युक्त धार्मिक तत्वों के उल्लेख से यह भी लक्षित होता है कि यदि धर्म को परिभाषित करने का प्रयास किया जाए तो धर्म का स्वरूप अधिक स्पष्ट होगा। धर्म क्या है? बहुधा इसकी परिभाषा करके ही इसे बतलाया जा सकता है। तब तक धर्म की अनेक परिभाषाएं की गई हैं। जान मार्ले के शब्दों में धर्म की 10,000 परिभाषाएं हैं। निःसंदेह इन विभिन्न परिभाषाओं में सत्यांश है, फिर भी इन्हें सब दृष्टियों से पूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धर्म की परिभाषाओं में यह कमी है कि या तो वे एकांगी हैं या अति संकीर्ण या व्यापक। सफल परिभाषा की कसौटियों पर प्रोफेसर गैलवे ने जोर देते हुए कहा है कि एक अच्छी परिभाषा तभी प्राप्त की जा सकती है जब तथ्यों की सावधानी पूर्वक निरपेक्ष दृष्टि से छानबीन की जाए। धर्म की परिभाषा करने के लिए हमें इसके दो पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य। एक पहलू धर्म, विश्वास और भावना है, यह एक आध्यात्मिक दृष्टि है, और दूसरे पहलू से धर्म आत्मगत प्रकृति का समुचित क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति है। अर्थात धर्म में मनुष्य अपने विश्वास और अनुभूति को क्रिया के माध्यम से प्रकट करता है। धर्म के स्वरूप के लिए दोनों पहलू आवश्यक हैं। आध्यात्मिक अनुभवों की प्रक्रिया में एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया होती रहती है। अतः यदि परिभाषा किसी एक पहलू पर जोर देती है तो वह एकांगी और दूषित मानी जाती है। पृष्ठ संख्या 26। प्रोफेसर गैलवे ने परिभाषा की दूसरी कसौटी यह प्रस्तुत की है कि धर्म की परिभाषा को धार्मिक चेतना के विकास के मूल प्रेरक तत्वों को प्रकट करना चाहिए। अरस्तु की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि अरस्तु ने बताया है कि परिभाषा में केवल तत्वों की ही व्याख्या नहीं करनी चाहिए, वरन इसमें कारणों को भी दिग्दर्शित करना चाहिए। अतः धर्म की परिभाषा में आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक तत्वों या प्रेरकों का भी उल्लेख होना चाहिए। ये तत्व भावना, ज्ञान तथा संकल्प है। अतः धर्म एक विश्वास, एक भावना, ज्ञान तथा संकल्प की व्यवहारिक क्रिया है। संक्षेप में हम सफल परिभाषा की निम्नलिखित कसौटियों का उल्लेख कर सकते हैं। पहला है, धर्म की परिभाषा सामान्य धार्मिक तत्वों पर आधारित होनी चाहिए। धर्म एक मानसिक क्रिया है, तो धार्मिक चेतना के विभिन्न पहलुओं, बुद्धि, भावना और संकल्प का उल्लेख होना चाहिए। दूसरा है, धर्म में एक असीम सत्ता या ईश्वर का पाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः परिभाषा में इस ओर संकेत आवश्यक है। तीसरा है, परिभाषा ऐसी हो जो सभी धर्मों, निम्न और उच्च, पर लागू हो सके। चौथा है, परिभाषा न संकीर्ण हो और न व्यापक। संकीर्णता से धर्म के अनेक पहलू छूट जाते हैं और अधिक व्यापक होने से उस परिभाषा का कोई अर्थ ही नहीं निर्दिष्ट होता। पांचवा है, परिभाषा वर्णनात्मक हो न कि आदर्शात्मक। वर्णनात्मक परिभाषा से धर्म के मूल तत्वों की व्याख्या संभव है, जबकि आदर्शात्मक परिभाषा में यह संभव नहीं है। अगला शीर्षक है परिभाषाओं का वर्गीकरण। यहाँ हम धर्म की दी गई समस्त परिभाषाओं का विवेचन तो नहीं कर सकते और करना भी संभव नहीं है, परंतु प्रमुख दृष्टिकोणों के आधार पर हम कुछ परिभाषाओं को 5 वर्गों में बांट सकते हैं और उनकी समीक्षा उपयुक्त कसौटी के आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें से क है ज्ञान मूलक परिभाषाएं, ख है भावना मूलक परिभाषाएं, ग है संकल्प मूलक परिभाषाएं, घ है मूल्य संबंधी परिभाषाएं, ङ है यथोचित परिभाषाएं। अगला शीर्षक है क ज्ञान मूलक परिभाषाएं। कुछ लोगों ने धर्म में केवल बुद्धि को महत्व देते हुए धर्म की ज्ञान मूलक परिभाषाएं दी हैं। दार्शनिक हेगल ने धर्म की परिभाषा इस प्रकार दी है, अपूर्ण बुद्धि द्वारा अपने स्वरूप का पूर्ण बुद्धि के रूप में ज्ञान ही धर्म है। अर्थात धर्म एक प्रकार का ज्ञान है जिसमें निरपेक्ष सत्ता का पूर्ण बोध प्राप्त होता है। एक दूसरी परिभाषा E.B. टायलर ने दी है, जिनके अनुसार धर्म आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास है। मैक्स मूलर ने धर्म को मानसिक शक्ति के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि धर्म वह मानसिक शक्ति या प्रवृत्ति है जो मनुष्य को अनंत सत्ता का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। पृष्ठ संख्या 27, शीर्षक है आलोचना। इसके अंतर्गत पहला शीर्षक है संकीर्ण एवं एकांगी। परिभाषा की कसौटी के आधार पर उपर्युक्त सभी परिभाषाएं संकीर्ण एवं एकांगी हैं। इन परिभाषाओं से धर्म के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश नहीं पड़ता। हेगल और टायलर के अनुसार धर्म केवल ज्ञान और विश्वास है, परंतु धर्म में भावना और संकल्प का भी महत्व है। धर्म का पूर्ण स्वरूप ज्ञान, भावना एवं संकल्प के समन्वय में माना जा सकता है। केवल ज्ञान या विश्वास तक धर्म को सीमित करना उचित नहीं कहा जा सकता। अब दूसरा शीर्षक है धर्म की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या नहीं हो सकती। यदि धर्म को ज्ञान या विश्वास तक सीमित रखते हैं या मैक्स मूलर की भांति एक मानसिक शक्ति या प्रवृत्ति मानते हैं तो आदिम धर्मों यथा प्राणवाद, टोटमवाद आदि की व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि आदिम धर्मों में ज्ञान अथवा मानसिक शक्ति विकसित नहीं पाई जाती जो असीम का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो। अगला शीर्षक है ख भावना मूलक परिभाषाएं। कुछ विचारकों ने धर्म की भावना मूलक परिभाषाएं की हैं। इनमें सबसे प्रमुख स्लायरमाखर हैं। इनके अनुसार ईश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने की भावना में ही धर्म का तत्व निहित है। C.P. टोल ने भी धर्म को भावना मूलक वित्ती माना है और उनका कहना है कि धर्म वह शुद्ध तथा श्रद्धायुक्त मनोवृत्ति है जिसे हम भक्ति कहते हैं। इन विचारकों के अनुसार यही स्पष्ट होता है कि भावना ही धर्म का सार तत्व है। स्लायर माखर ने तो बुद्धि तथा नैतिकता की अपेक्षा शरणागत की भावना पर ही अत्यधिक जोर दिया है। धर्म के लिए ज्ञान, तर्क अथवा नैतिकता आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। इनके अनुसार शुद्ध धर्म तो शुद्ध भावना में निहित है। ज्ञान से रहित होने पर ही धर्म का स्वरूप जाना जा सकता है। विचार और सिद्धांत धर्म से परे हैं। धर्म शुद्ध भावनात्मक है, परंतु विचार और सिद्धांत ज्ञानात्मक है। अतः ज्ञान का धर्म में स्थान नहीं है। उनका कहना है कि नैतिकता में आत्मनियंत्रण और स्वतंत्रता की भावना होती है, जबकि भक्ति में निर्भरता तथा आत्मनिवेदन की भावना होती है। अतः स्लायर माखर के अनुसार धर्म में अपूर्ण में पूर्ण का साक्षात बोध होता है। नश्वर में अनश्वर की उपस्थिति होती है और पूर्ण की प्राप्ति अपूर्ण की निर्भरता होती है। निश्चय ही स्लायर माखर ने धर्म को कोरे बुद्धिवाद तथा संकुचित नैतिकता की परिधि से दूर रखा है। धर्म को उच्च रहस्यवादी धरातल पर अवस्थित किया है। यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि धार्मिक चेतना में भावना की प्रधानता होती है, अतः भावना पर धर्म को आधारित करना अनुचित नहीं कहा जा सकता। परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि स्लायर माखर की परिभाषा निर्दोष है। इनकी परिभाषा भी मान्य कसौटी के आधार पर उचित नहीं कही जा सकती। यह परिभाषा भी संकीर्ण, अत्यधिक व्यापक और विरोधपूर्ण है। अगला शीर्षक है आलोचना। इसके अंतर्गत पहला शीर्षक है धार्मिक भावना केवल भावना मात्र नहीं होती। प्रोफेसर एडवर्ड ने स्लायर माखर की परिभाषा की आलोचना करते हुए कहा है कि शुद्ध धार्मिक भावना का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके साथ ज्ञान और संकल्प भी अवश्य रहते हैं। पृष्ठ संख्या 28। धार्मिक भावना को उसके विषय से विलग नहीं कर सकते। अतः स्लायर माखर यदि धर्म को भावना तक सीमित रखते हैं तो परिभाषा अत्यंत सीमित एवं संकीर्ण हो जाती है। धर्म के अन्य पक्षों की उपेक्षा हो जाती है। दूसरा शीर्षक है अत्यधिक व्यापक। प्रोफेसर एडवर्ड ने स्लायर माखर की निर्भरता की भावना की आलोचना करते हुए कहा है कि यह भावना केवल धर्म तक ही सीमित नहीं कही जा सकती। निर्भरता की भावना धर्म से परे तथा घरेलू पशुओं के जीवन में भी देखी जा सकती है। अतः निर्भरता की भावना का क्षेत्र व्यापक है। अतः यह परिभाषा अत्यंत व्यापक होने के कारण धर्म के वास्तविक स्वरूप को प्रकट नहीं करती। तीसरा शीर्षक है विरोध पूर्णता। स्लायर माखर धार्मिक भावना को शुद्ध भावना मानते हैं, परंतु बिना विश्वास और ज्ञान के निर्भरता की भावना संभव ही कैसे हो सकती है। अतः विचार और ज्ञान से भावना को अलग नहीं कर सकते। श्लायरमाखर की निर्भरता की भावना को शुद्ध भावात्मक कहना विरोधपूर्ण कथन है। बिंदु चौथा शीर्षक है, आदिम धर्मों की व्याख्या नहीं हो सकती। धर्म को केवल भावना तक सीमित रखने से आदिम धर्मों यथा जीववाद टोटमवाद की व्याख्या नहीं हो सकती। अगला शीर्षक है, ग संकल्प मूलक परिभाषाएं। तीसरे वर्ग की परिभाषाओं में संकल्प मूलक पहलू पर विशेष बल दिया गया है। संकल्प को धर्म का मूल तत्व माना गया है। इस प्रकार की परिभाषाओं में नैतिक संकल्प अथवा नैतिक चेतना को ही व्यवहार के रूप में अव्यक्त किया जाता है। ज्ञान या अनुभव की अपेक्षा व्यवहार ही धर्म की भित्ति मानी जाती है। इस प्रकार की परिभाषा सर्वप्रथम कांट द्वारा प्रस्तुत की गई है। कांट के अनुसार दैवी आदेश के रूप में कर्तव्यों की स्वीकृति ही धर्म है। फ्लेडरड के अनुसार देवता के विचार के अनुरूप निर्दिष्ट संकल्प ही धर्म है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने धर्म में नैतिकता के साथ संवेग का महत्व स्वीकार करते हुए परिभाषा की है। इनके अनुसार संवेग सहित नैतिकता ही धर्म है। अगला शीर्षक है आलोचना। इसमें पहला है एकांगी परिभाषाएं। इन परिभाषाओं में वे दोष हैं जो अन्य परिभाषाओं में देखे जा चुके हैं। ये परिभाषाएं एकांगी हैं क्योंकि इनमें केवल व्यवहारिकता तथा क्रियात्मक पक्ष पर ही विशेष जोर दिया गया है। धर्म के भावात्मक पक्ष की उपेक्षा की गई है। अब दूसरा शीर्षक है, केवल नैतिकता से रहस्यवादी धर्म की व्याख्या नहीं होती। यदि धर्म को केवल नैतिक जीवन तक ही सीमित रखा जाता है तो रहस्यवादी धर्म की व्याख्या नहीं की जा सकती। धर्म का एक रूप तो सत्ता के साथ तादात्म्य संबंध में भी देखा जाता है। यह संबंध केवल नैतिकता के पालन से तो संभव नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त धर्म में शक्ति, प्रार्थना, पूजा, श्रद्धा आदि जो धार्मिक अनुभव की विशेषताएं हैं, उनकी भी व्याख्या नैतिकता के आधार पर संभव नहीं है। पृष्ठ संख्या 29। आर्नोल्ड ने यद्यपि नैतिकता के साथ संवेग को जोड़ा है, फिर भी वह नैतिकता पर ही विशेष बल देते हैं। और यह भी नहीं भूला जा सकता कि धर्म और नैतिकता में पर्याप्त अंतर है। अगला शीर्षक है, घ मूल्य संबंधी परिभाषाएं। सबसे अधिक प्रिय और प्रचलित प्रवृत्ति मूल्य की दृष्टि से धर्म को परिभाषित करने में देखी जाती है। प्रोफेसर एडवर्ड के शब्दों में श्लायरमाखर द्वारा प्रस्तुत भावमूलक परिभाषा की अपेक्षा मूल्य संबंधी परिभाषा अत्यधिक उपयुक्त तथा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस परिभाषा से धर्म के प्रयोजन मूलक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। प्राचीन समय में प्लेटो के शुभ तथा आधुनिक समय में कांट के शुभेच्छा के मूल्य के प्रत्यय निहित हैं। लाटजे तथा रिछल मूल्य को भावना से अभिन्न मानते हैं। मूल्य के परिप्रेक्ष्य में धर्म की सर्वप्रथम परिभाषा हेराल्ड हाफडिंग ने दी है। इनके अनुसार मूल्यों के संरक्षण में विश्वास ही धर्म का मूल तत्व है। हाफडिंग ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि मानव जीवन में मूल्यों का कभी नाश नहीं होता। इनके अनुसार मूल्यों का संरक्षण शक्ति के संरक्षण के नियम के अनुकूल है। धर्म में व्यक्ति को विश्वास रहता है कि उसके जीवन के मूल्यों का संरक्षण होता रहेगा। वह किसी शक्ति का सहारा लेते हुए मूल्यों की प्राप्ति में सचेष्ट रहता है। यह विश्व ही शुभयुक्त है। मनुष्य अकेले मूल्यों का संरक्षण नहीं कर सकता। उसके लिए सहानुभूतिपूर्ण विश्व ही है जो मूल्यों के संरक्षण में सहायक होता है। हाफडिंग मूल्यों की मान्यता में पूर्णतया विश्वास रखते हैं। उनका यह विश्वास है कि सत्य और शुभेच्छा की विजय होती है। सृष्टि के पीछे ऐसी शक्ति आवश्यक है जो सद प्रवृत्तियों और शुभ की रक्षा में सहायता करती है। हाफडिंग के अनुसार धार्मिक और वैज्ञानिक मनोवृत्ति एक दूसरे की विरोधी नहीं है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि मूल्यों को वास्तविकता से अलग नहीं किया जा सकता। वास्तविकता और मूल्यों में पूर्णतया समायोजन दृष्टिगोचर होता है। अगला शीर्षक है आलोचना। हाफडिंग द्वारा की गई परिभाषा की प्रोफेसर एडवर्ड ने कई रूपों में आलोचना की है, जिनमें अ है शीर्षक के रूप में मूल्य संरक्षण की तुलना शक्ति संरक्षण के सिद्धांत से करना अनुचित है। शक्ति संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि शक्ति की मात्रा स्थिर रहती है, केवल उसके रूप में परिवर्तन होता है, परंतु मूल्यों की मात्रा में ह्रास एवं वृद्धि के लिए नैतिकता की मांग होती है। अतः सिद्ध है कि मूल्यों की मात्रा स्थिर न होकर अस्थिर है। अब बिंदु ब है, शीर्षक है हाफडिंग ने धर्म के ज्ञानात्मक क्रियात्मक पक्ष की उपेक्षा की है। मूल्यों के संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर धर्म की व्याख्या करने से धार्मिक चेतना के क्रियात्मक एवं प्रयोजनात्मक पक्ष की अवहेलना होती है। हाफडिंग ने धर्म का भावना के साथ अत्यधिक और संकल्प के साथ बहुत कम संबंध स्थापित किया है। वास्तविकता यह है कि धर्म केवल निष्क्रिय विश्वास मात्र नहीं है। धर्म में अतीत और वर्तमान मूल्यों की सुरक्षा के साथ ही नवीन मूल्यों की भी खोज होती है। अतः धर्म केवल भावना ही नहीं बल्कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय है। पृष्ठ संख्या 30, बिंदु स है हाफडिंग के अनुसार धर्म प्रगतिशील नहीं है। मूल्य संरक्षण का सिद्धांत निश्चय ही धर्म की प्रगतिशीलता को स्वीकार नहीं करता, परंतु धार्मिक चेतना में प्रगति अस्पष्टतः देखी जा सकती है। यदि धर्म गतिशील न होता तो उसमें नवीन मूल्यों की वृद्धि न होती। पैगंबरवादी धर्म को देखने से पता चलता है कि धर्म में प्रगतिशीलता का तत्व विद्यमान है। अगला शीर्षक है द उपासक और उपास्य में तादात्म्य संबंध का अभाव। हाफडिंग की परिभाषा के अनुसार धर्म में व्यक्ति पूर्ण ईश्वर को स्थान नहीं दिया जा सकता, परंतु उपासक और उपास्य में तादात्म्य संबंध धर्म का अनिवार्य तत्व है। मूल्यों के स्रोत ईश्वर के प्रति तादात्म्य संबंध स्थापित करने से ही धार्मिकता पूरी हो सकती है। भक्त ईश्वर के साथ प्रेम एवं आत्मीय संबंध स्थापित करता है, अतः इसके अभाव में धार्मिक चेतना की व्याख्या नहीं हो सकती। सारांश यह है कि धर्म में आत्मगत या आंतरिक और वस्तुगत या बाह्य दो तत्व वर्तमान रहते हैं। आत्मगत रूप में व्यक्ति की भावना, बुद्धि और क्रिया शक्ति, वस्तुगत तत्व ईश्वर या आराध्य के प्रति अव्यक्ति होती है। अर्थात धर्म में उपासक और उपास्य के बीच तादात्म्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। अंत में एडवर्ड ने परिभाषा की मीमांसा के आधार पर धर्म की एक समुचित परिभाषा दी है। धर्म केवल मूल्यों के स्रोत अतींद्रिय सत्ता में विश्वास मात्र नहीं है, वरन इसके साथ ही सत्ता के प्रति भावनात्मक एवं संकल्पनात्मक प्रतिक्रिया भी है। हाफडिंग के अतिरिक्त डब्ल्यू के राइट, हार्किंग तथा बैडले आदि विचारकों ने भी धर्म की मूल्य संबंधी परिभाषाएं की हैं। राइट ने भी मूल्यों के संरक्षण पर बल दिया है तथा इसके साथ ही पराशक्ति और उसके ऊपर निर्भरता की भावना को भी व्यक्त किया है। हार्किंग ने धर्म में वर्तमान तथा अतीत के मूल्यों के अतिरिक्त भविष्य के मूल्यों को अधिक स्थान दिया है। ब्रैडले के अनुसार धर्म वह प्रयास है जिसमें सत्ता के सभी पहलुओं से शुभत्व की पूर्ण यथार्थता की अभिव्यक्ति की जाती है। अगला शीर्षक है आलोचना। मूल्य संबंधी इन परिभाषाओं से भी धर्म के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश नहीं पड़ता। इन परिभाषाओं में धर्म के सभी पहलुओं पर प्रकाश नहीं डाला गया है। दूसरे धर्म कोई काल्पनिक उड़ान मात्र नहीं है। इसका संबंध भविष्य के मूल्यों से नहीं बल्कि वर्तमान जीवन और मूल्यों से ही है। धार्मिक व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में ही अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंचता है। साधक और धार्मिक महापुरुष इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब अगला शीर्षक है अंग यथोचित परिभाषाएं। उपर्युक्त विवादग्रस्त और एकांगी परिभाषाओं के अतिरिक्त विचारकों द्वारा कुछ ऐसी परिभाषाएं भी दी गई हैं जो यथोचित रूप में स्वीकार की जा सकती हैं, क्योंकि सफल परिभाषाएं की कसौटियों के आधार पर उनकी उपयुक्तता सिद्ध होती है। ऐसी परिभाषाओं में फ्लिंट, जेम्स तथा गैलवे की परिभाषाओं का उल्लेख किया जा सकता है। अगला शीर्षक है फ्लिंट। धर्म मनुष्य का ऐसी सत्ता या सत्ताओं में विश्वास है जो उससे शक्तिशाली और इंद्रियातीत है, परंतु वह उसके अस्थाई भावों तथा क्रियाओं के प्रति उदासीन नहीं है। पृष्ठ संख्या 31। शीर्षक है इस परिभाषा की विशेषताएं। पहला है, फ्लिंट की परिभाषा में धार्मिक चेतना के विभिन्न पहलुओं, ज्ञान, भावना तथा क्रिया का समावेश किया गया है। इससे धर्म का पूर्ण स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। दूसरा है, इस परिभाषा से निम्न तथा उच्च दोनों प्रकार के धर्मों की व्याख्या हो जाती है। तीसरा है, प्रस्तुत परिभाषा न तो संकीर्ण ही है और न तो अतिव्यापक ही है। चौथा है, इसमें धर्म के आंतरिक एवं बाह्य तत्वों का उल्लेख मिलता है। सत्ता या सत्ताएं वस्तुगत या बाह्य तत्व के रूप में हैं और विश्वास, अस्थाई भाव तथा क्रियाएं उपासक के आंतरिक तत्व में प्रदर्शित की गई हैं। अगला शीर्षक है जेम्स। धर्म का अर्थ व्यक्ति का वह एकांतिक भाव, क्रिया एवं अनुभव है जो व्यक्ति और ईश्वर के संबंध के ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। अब इसकी समीक्षा। पहला, इस परिभाषा में भी धर्म के सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है। कुछ लोग जेम्स की परिभाषा की वैयक्तिकता की दृष्टि से आलोचना करते हैं, परंतु जेम्स ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि धर्म का सामाजिक रूप व्यक्तिगत धर्म में अंतर्निहित रहता है। सांस्थिक धर्म व्यक्तिगत धर्म के ही परिणाम कहे जा सकते हैं। फिर जेम्स ने संतों और धार्मिक महापुरुषों के लोक उपकारी कार्यों की सामाजिक दृष्टि से धर्म की उपयोगिता के कारण ही पर्याप्त प्रशंसा की है। जेम्स का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण व्हाइट हेड की परिभाषा में व्यक्त दृष्टिकोण से भिन्न है। व्हाइट हेड के अनुसार व्यक्ति एकांतिकता में जो कुछ करता है वही धर्म है। इनकी परिभाषा में तो केवल क्रियात्मकता पर ही विशेष जोर दिया गया है, भावात्मक तथा ज्ञानात्मक पहलू छोड़ दिए गए हैं। वास्तव में यह परिभाषा वैयक्तिक दृष्टिकोण पर आधारित है। जेम्स की परिभाषा इस दोष से सर्वथा मुक्त है। अब अगला शीर्षक है गैलवे। अपने से परे शक्ति में मनुष्य का वह विश्वास धर्म है जिसके द्वारा वह अपनी भावनाओं की संतुष्टि और जीवन की स्थिरता प्राप्त करता है तथा जिसे वह पूजा एवं सेवा के माध्यम से प्रकट करता है। अब अगला शीर्षक है गैलवे की परिभाषा का विश्लेषण एवं समीक्षा। गैलवे की परिभाषा सर्वाधिक रूप से उचित मानी जाती है। इसमें धार्मिक चेतना के पक्ष विशेष पर बल न देकर भावना, ज्ञान और क्रिया को समान महत्व प्रदान किया गया है। धर्म का ज्ञानात्मक पहलू विश्वास में प्रकट होता है। भावनात्मक पहलू की पुष्टि मानव की संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता जीवन की स्थिरता या दूसरे शब्दों में आत्मरक्षा की आवश्यकता विशेष महत्वपूर्ण है। धर्म द्वारा मनुष्य की इन्हीं भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। धार्मिक चेतना का तीसरा पहलू संकल्प या क्रिया शक्ति है। गैलवे की परिभाषा में इसकी पुष्टि पूजा, सेवा आदि क्रियाओं द्वारा हो जाती है। यही नहीं, इस परिभाषा से धर्म की विभिन्न अवस्थाओं, निम्न तथा उच्च धर्मों की भी व्याख्या हो जाती है। पृष्ठ संख्या 32। कुछ लोगों की आपत्ति है कि गैलवे की परिभाषा में ईश्वरवाद को विशेष महत्व दिया गया है, परंतु सभी धर्मों में ईश्वर को स्थान नहीं दिया गया है। स्पष्ट है कि प्रारंभिक धर्मों में ईश्वर जैसी सत्ता का विचार विकसित नहीं था और न विकसित धर्मों जैसे जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में ही ईश्वर की मान्यता है। फिर यह परिभाषा किस प्रकार उपयुक्त कही जा सकती है? अगला शीर्षक है निराकरण। उपयुक्त आक्षेप का उत्तर बड़ी सरलता से दिया जा सकता है। गैलवे ने अपनी परिभाषा में पराशक्ति का उपयोग किया है। वास्तव में पराशक्ति से साक्षात रूप में एकमात्र ईश्वर का ही बोध नहीं होता, इससे अतींद्रियता या परालौकिकता का भी स्पष्ट बोध होता है। यह तो सभी आध्यात्मिक धर्मों में तथा मानव विवेक से भी स्वीकार किया जाता है कि वर्तमान जगत ही सब कुछ नहीं है। एक अदृश्य जगत अपने अस्थायित्व और पूर्णता के आकर्षण से आकर्षित कर रहा है। वह चिरंतन और अनश्वर है। इस जगत की अनुभवात्मक चेतना घोषणा करती है कि यहाँ सभी क्षण भंगुर और नाशवान हैं। धर्म में इस परे की भावना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आदिम धर्मों से परे की सत्ता टोटम जीववाद या पूर्वज आराधना से अस्पष्ट झलकती है, जिसके ऐश्वर्य और चमत्कार से चमत्कृत होकर आदिम मनुष्य भावना से अभिभूत होकर उन्मुख हुआ था। अब भी धर्म की दृष्टि से अविकसित व्यक्ति भूत प्रेत या पेड़ पौधों की पूजा इसी आधार पर करता है। दूसरी ओर अनिश्वरवादी धर्मों में यही बात देखी जाती है। क्या जैन तथा बौद्ध धर्म वर्तमान जगत की नश्वरता को स्वीकार नहीं करता? क्या वह मुक्तिदायक विचारों से अग्रसर नहीं होता? वास्तव में यही तो मुक्तिदायक धर्म कहे जाने के अधिकारी हैं। सारांश यह है कि परे का भाव सभी धर्मों में समाविष्ट है। इसके विचार मात्र से धार्मिकता का प्रारंभ स्वीकार किया जा सकता है। यदि गैलवे द्वारा कथित पराशक्ति के अर्थ को अपने स्वार्थवश केवल आलोचना के लिए ईश्वरवाद तक ही सीमित किया जाए और व्यर्थ में उसकी खींचातानी की जाए, तो अवश्य ही इस परिभाषा को भी संकीर्ण कहा जा सकता है। सच बात तो यह है कि चाहे हेगल या हेगेलवादी विचारक परे की कितनी भी अस्वीकृति करें, परंतु धर्म में निहित आश्चर्य और रहस्यमयता की व्याख्या परे द्वारा ही हो सकती है। यही धर्म की आधार भित्ति है। W.R. Inge ने ठीक ही कहा है कि हमारी परे की चेतना सभी धर्मों में कच्चा माल के रूप में है। परिभाषाओं के संबंध में एक निष्कर्ष गैलवे के शब्दों में यह भी दिया जा सकता है कि धर्म की कोई भी परिभाषा धर्म के वास्तविक स्वरूप को चित्रित नहीं कर सकती। धर्म का वास्तविक एवं पूर्ण ज्ञान तो तभी संभव है जब व्यक्तिगत धार्मिक अनुभूति हो तथा तथ्यों का सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किया जाए।